جہاں یہ ریکارڈنگ کرتے ہو تو کبھی سنتے ہو ریپیٹ کے؟ اچھا تو بات
کون لائف میں جاتا ہے؟
ڈیڑھ مہینہ تو نہیں چھوڑ، ڈیڑھ مہینے تک کا تو نہیں ڈالا ہے، میں نے دیکھا تھا نیٹ پہ،
اس سے پہلے کا ڈالا ہے، ابھی آئے
سوئی رادھا مادھو کنج بہاری جایا، سوئی رادھا مادھو کنج بہاری، جن ولبھ گریور دھاری، جی گوپی جن ولبھ گریور دھاری، یشودانندن برج جن رنجن، یشودانندن یشودانندن برج جن رنجن، یشودان یشودانندن برج جن رنجن، یشودانندن یشودانندن برج جن رنجن، یشودانندن رنجن یمنا تیرا ون چاری، یمنا تیری جی رادھا مادھو کنج بہاری، جی رادھا جی رادھا مادھو کنج بہاری، جی جی گوپی جن ولبھ گریور دھاری، جی گوپی جن جی یشودانندن برج جن رنجن، یشودانندن رنجن یشودانندن برج جن رنجن، یشودانندن یشودانندن برج جن رنجن، یشودان رنجن یمنا تیرا ون چاری، جی رادھا مادھو کنج بہاری، جی رادھا مادھو جی رادھا مادھو رادھا مادھو جی رادھا مادھو جی जय राधा माधव जय राधा गिरिधारी राधा गिरिधारी राधे राधे जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय बलदेव जय सुभद्रा जय जगन्नाथ सुभद्रा जय गौरनिताय जय गौरनिताय गौरनिताय जय गौरनिताय जय गौरनिताय जय मायापुर धाम जय मायापुर धाम मायापुर धाम जय मायापुर धाम जय मायापुर धाम जय मायापुर धाम मायापुर धाम मायापुर धाम जय मायापुर धाम मायापुर धाम जय जय प्रभुपाद 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 गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल
हरि नाम संकीर्तन की जय श्रील प्रभुपाद की जय ताई गौर प्रेमानंद ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वती व्यासं ततो जय मुदीरये नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति निष्ठकी
गलत लिखा है आज से तो लास्ट में संधि विच्छेद किया है ना नल कुबर मणिग्रीव तो नल कुबर मणिग्रीव आसतु यमल अर्जुन
तो र निकाल दूंगा
ठीक है चलेगा भागवतम दशम स्कंद दशम अध्याय श्लोक संख्या 23
सब बोलिए। श्री शुक उवाच एवं मुक्त्वा स देवर्षि गतो नारायणाश्रमम् नलकुवर मणिग्रीवो आसतु यमलार्जुनो। श्रीशुक उवाच एवं मुक्त्वा स देवर्षि गतो नारायणाश्रमम् नलकुवर मणिग्रीवो आसतु यमलार्जुनो। श्रीशुक उवाच एवमुक्त्वा स देवर्षि गतो नारायणाश्रमम् नलकुवर मणिग्रीवो आसतु यमलार्जुनो। उवाच सुखदेव गोस्वामी ने कहा एवं उक्त्वा ऐसा कहकर स व देवर्षि परम संत पुरुष नारद गत वहां से चला गया नारायण आश्रमम अपने आश्रम जिसे नारायण आश्रम कहते हैं। नलकुबर मणिग्रीव तथा मणिग्रीव आसतु वहां रह रहे। यमल अर्जुनो जुड़वा अर्जुन वृक्ष बनने के लिए अनुवाद एवं तात्पर्य ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद जी द्वारा श्री प्रभुपाद की जय। अनुवाद श्री सुखदेव गोस्वामी ने आगे कहा, इस तरह कहकर देवर्षि नारद अपने आश्रम नारायण आश्रम को लौट गए और नलकुबर तथा मणिग्रीव जुड़वा अर्जुन वृक्ष यमला अर्जुन बन गए। तात्पर्य आज भी अनेक जंगलों में अर्जुन वृक्ष पाए जाते हैं जिनकी छाल हृदय व्यथा होने पर डॉक्टरों द्वारा दवाई तैयार करने के काम आती है। इसका अर्थ यह हुआ कि वृक्ष होने पर भी चिकित्सा विज्ञान के लिए छाल निकालने पर उन्हें सताया जाता है। ओम ज्ञानति निरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत श्रीराधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी श्रीराधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरि। वाञ्छाकल्पतरुभ्यस्य कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्रीगौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा। हम सबका परम सौभाग्य है कि ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद जी की कृपा से शास्त्रों में जिनको दुर्लभ अति दुर्लभ बताया गया वैसे साधु संग श्रीमद् भागवत श्रवण इत्यादि सहजता से सरलता से प्राप्त हो रहा है। शास्त्रों में कहा गया है कि साधु संग साधु संग साधु संग सर्व शास्त्र कई लय मात्र साधु संग सर्व सिद्धि है। साधुओं की बहुत बड़ी महिमा है एक ही श्लोक में कह दिया। और राय रामानंद और महाप्रभु जब मिले तो महाप्रभु ने प्रश्न कर दिया कि इस संसार में सबसे बड़ा दुख कौन है, भारी दुख, फ्लैट न होना, धन न होना, गाड़ी न होना, बंगला न होना, पत्नी न होना, ये ब्रह्मचारियों के लिए नहीं गृहस्थों के लिए। तो सबसे बड़ा दुख कौन है, भारी दुख। तो राय रामन ने क्या उत्तर दिया, कृष्ण भक्त विरह बिना दुख नहीं यार। कितनी बड़ी बात है ना, कृष्ण भक्त विरह, कृष्ण भक्त का संग छूट जाना जीवन में, इससे बड़ा कोई दुख नहीं है। और हमारे लिए इससे बड़ा कोई सुख नहीं है। हम कभी कभी कह देते ये कहां से आ गए, नहीं हम अभी भक्त की परिपाटी में भक्त के गुण में नहीं आए हैं, इसका अर्थ यही हुआ। क्योंकि वैष्णव महात्म्य में ऐसा कहा गया है, वैष्णवों का महात्म्य बहुत बहुत लिखा गया है, उसमें एक लाइन यह भी है कि जिसके गले में तुलसी की कंठी धारण की है वो सब वैष्णव है। तुलसी का भी बहुत बड़ा महात्म्य है, यमदूत स्पर्श नहीं कर सकते जिसके गले में तुलसी की माला रहती है उसको। तो वैसे साधुओं के संग में बैठकर श्रवण कीर्तन का सौभाग्य प्राप्त होना वो अपने आप में ही बहुत बड़ा भाग्य प्रकाशित करता है अपने लिए। ये कोई मामूली साधारण बात नहीं, देवताओं को भी दुर्लभ कहा गया है भागवत। देवानाम अपि दुर्लभम, देवताओं को भी दुर्लभ है, देवता भी प्राप्त नहीं कर पाते, वो भी भोग में लगे रहते हैं। इसीलिए बत्रासुर जी ने इंद्र को कहा कि तू समझता है कि मैं हार गया और तू जीत गया तो ये तेरा भ्रम मात्र है। भोग में लगा हुआ व्यक्ति कभी जीत नहीं पाता। भगवान ने तुझे ऐश्वर्य देकर भोग में तू लग जाएगा, तू भूल जाएगा भगवान को, और मैं जीत गया क्योंकि भगवान की कृपा हो गई मुझ पर। वही चार श्लोकों में उन्होंने स्तुति की, आचार्य गण ने कहा कि वही चतुर्श्लोकी भागवत कह दिया। भागवत में, भागवत महात्म्य में ऐसा लिखा गया है कि भागवत ग्रंथ वह है जिनमें बत्रासुर का स्तुति हो। अहम हरे तव पादे कमल दासानुदासो भविदास्मी भूय मना स्मरे दास उपत गुणास्ते व्रणीत वाक कर्म करोत। ऐसे बहुत एक के बाद एक श्लोक को उत्तरोत्तर अच्छा प्रकाशित किया है। कहने का तात्पर्य है कि साधु के संग में बैठकर हरि कथा, यही अपने आप में सबसे बड़ा सौभाग्य है। तो हमें यह कह रहा था प्रभुपाद जी की असीम कृपा से हम सबका अपने आप में कोई सौभाग्य नहीं, लेकिन उस संत की कृपा से, जैसे नलकुवर और मणिग्रीव में कोई गुण नहीं है, है ना, लेकिन नारद जी की कृपा से उनको प्राप्त हो गया, वैसे ही श्रील प्रभुपाद जी की कृपा से हम सबको यह सौभाग्य प्राप्त हो रहा है जैसे नलकुवर और मणिग्रीव को प्राप्त हुआ है ना। दोनों एक ही बात है, वहां नारद जी है यहाँ प्रभुपाद जी है, यही सबसे बड़ा सौभाग्य है। फर्क इतना है कि उन दोनों ने स्वीकार कर लिया, सामने कोई प्रत्युत्तर नहीं किया, और हम लोग स्वीकार नहीं करते, सुनते हैं लेकिन स्वीकार नहीं करते। यह भी कलयुग का लक्षण है। तो बहुत बहुत सारी बातें हैं भागवत के, एक एक शब्द का दशास्वादन करना, यही भक्तों के जीवन का परम चरम लक्ष्य है। क्योंकि महाप्रभु ने कहा है कि भागवत रसास्वादन, रस कहा, रसास्वादन करना चाहिए भागवत का। ऐसे नहीं कि कुछ भी बोल दिया ठीक है चले, नहीं, एक एक शब्दों का रस, एक एक शब्द में रस है, रस छिपा हुआ है। भागवत पढ़िया भागवत स्थाने सिधर अनुगत करी कर भागवत श्रवण, सिधर स्वामी गुरु मानी। महाप्रभु ने कहा है कि भागवत कैसे पढ़ना चाहिए, कैसे सुनना चाहिए, वह परिपाटी श्री चैतन्य महाप्रभु ने सिखाया कि भागवत पढ़िया भागवत स्थाने, एक लाइन है लेकिन कितनी सुंदर लाइन है, भागवत पढ़िया भागवत स्थान, भागवत के स्थान में बैठकर भागवत को सुनना चाहिए। अभी भागवत का स्थान मतलब इस पर बहुत बहुत व्याख्या हो सकती है। भागवत का एक सीधा साधा अर्थ होता है जो भगवान का, अथवा तो भगवान के विषय में जो जानता है, जिनके हृदय में भगवान की नित्य लीला रमण करती है ना, बहुत सारे अर्थ। वैसे भगवान के भक्तों में के सानिध्य में बैठकर भागवत को श्रवण करना चाहिए। और हम सब लोग यहाँ पर भागवत मतलब श्री प्रभुपाद जी, उनके गुरु इत्यादि, हमारे आचार्य गण, रूप सनातन इत्यादि की टीकाओं के माध्यम से सब लोग यहाँ पर आकर पोस्टमैन का काम करते हैं। उन्होंने जो कहा है वो भक्तों के संग में बैठकर कुछ वार्तालाप चर्चा विचारणा करते हैं। यही भागवत सुनने का स्थान है। इस कान में जो भागवत सुनने मिलता है वही भागवत सुनने का, क्योंकि उन वैष्णवों के द्वारा कहा गया है, लिखा गया है, जिनके हृदय को छोड़कर भगवान कभी जाते नहीं है, न विस्वज्यति हृदय येषां, उन भक्तों के द्वारा कुछ भागवत पर टिप्पणी की गई है, उन भक्तों की टिप्पणियों को ही भक्तगण कहते हैं। इसीलिए यही सबसे बड़ा स्थान है भागवत सुनने का। तो प्रभुपाद जी की कृपा से, राधा गिरधारी की कृपा से, आप सब भक्तों की कृपा से कुछ आधा घंटा कहने का प्रयास करेंगे। दशम स्कंध पर नल कुबेर और मणिग्रीव का प्रसंग चल रहा है। एक बहुत बड़ा सिद्धांत मन एकाग्रित करके हम लोगों को हृदय में धारण करना चाहिए। क्या है वह सिद्धांत? कि नारद जी ने नलकुवर और मणिग्रीव को देखा। जय श्री श्री राधा गिरधारी जी की जय, जय श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा जी की जय। देखकर उन्होंने सोचा कि श्रीमद के मोह में मदांध हो गए हैं, है ना, तो अब उसकी चिकित्सा करनी चाहिए। एक दोष होता है और एक गुण होता है, व्यक्ति में दो तरह का विभाग होता है। दूसरे व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति का दोष देखते हैं तो उनको तिरस्कार करते हैं या दमन करते हैं। बहुत सुनने लायक, भक्तों के लिए बहुत सुनने लायक यह सिद्धांत है। किसी भी व्यक्ति ने, किसी भी व्यक्ति में अगर दोष देखा तो क्या करते, तिरस्कार करते हैं। सबसे पहले उसका तिरस्कार करते हैं या तो दमन करते हैं, दो में से एक बात करते हैं, है ना। लेकिन कितने ऐसे लोग हैं या कितने ऐसे जन हैं जो उनके दोष को देखकर उनके दोष को दूर करने की चेष्टा करते हैं। यद्यपि एक बात यह सत्य है कि भगवान के भक्त किसी में दोष या किसी के गुण देखते नहीं है, क्योंकि भगवान के भक्त अदोषदर्शी होते हैं। तो अदोषदर्शी होने के कारण भगवान का भक्त किसी में गुण देखते नहीं है या किसी में दोष नहीं देखते है। दोष क्यों नहीं देखते, यही बात का स्मरण करते, भगवान का भक्त कभी किसी में दोष नहीं देखते हैं। कि अगर अकृतश्चात सुचक्क अपि, भागवत में प्रथम स्कंध के 17वें अध्याय में महाराज परीक्षित धर्म का संवाद है, उसमें कहा गया है कि सुचक्कस्यापि तद भवेत्। जिस व्यक्ति ने जो पाप किया है, किसी ने चोरी की है, कोई जुआ खेल रहा है, किसी ने किसी की हिंसा की है, या जो भी किया है, पाप के राशि में जो जो भी कर्म आते हैं, उस कर्म को उस व्यक्ति को भुगतना पड़ता है जो देखकर बोलता है, देखकर सुनता है, या देखकर उसका मनन करता है, वर्णन करता है। तो जो व्यक्ति हिंसा इत्यादि किए है, जो व्यक्ति पाप कर्म में प्रवृत्त है, उन व्यक्ति को नरक भोग, जितना नरक या जितना दुख प्राप्त होता है, वही दुख उस व्यक्ति को भी होता है जो व्यक्ति उसका वर्णन इत्यादि करता। इस बात को, भागवत के इस सिद्धांत को स्मरण में रखकर भगवान का भक्त कभी किसी में दोष देखता नहीं है। यद्यपि रहता है तो उसको गुण के रूप में देखते हैं। मान लीजिए कोई कठोर भाषी है, कभी कभी होता है ना कि कोई कठोर भाषी होता है, तो कठोर भाषी को भी भगवान का भक्त रोग निवारण नीम की तरह देखते हैं।
नीम कैसे होता है, कड़वा होता है ना, लेकिन फिर भी उसके गुण के रूप में देखते हैं कि अच्छा है कि इस खाने से रोग की मुक्ति हो जाती है। वैसे ही बहुत सारे उदाहरण दिए गए हैं संतों के द्वारा, लेकिन मुख्य रूप से कि वह कभी किसी का दोष देखता नहीं है। क्यों? सुसुकश्यापि तद् भवेत्। वह सूचना देने वाले, सुनने वाला, वर्णन करने वाला, सबको यही दुख प्राप्त होता है, यही नरक प्राप्त होता है। जो करने वाले, वो जो क्रिया अधर्म कृत, जो अधर्म क्रिया की है, उनको जो प्राप्त होता है। इसलिए इस बात को हृदय में धारण करके भगवान का भक्त कभी किसी का दोष नहीं देखता है, पहली बात। दूसरी बात, तो आप लोग कहेंगे गुण, तो भागवत में कहा गया कि गुण भी नहीं देखते हैं। पर स्वभाव कर्माणि, दूसरों को स्वभाव को सत या असत किसी वस्तु को वो नहीं देखते, नहीं ग्रहण करते हैं। यही भागवत उक्ति को धारण करके भगवान का भक्त कभी किसी में दोष या गुण नहीं देखते। गोकर्ण जी ने भी उसके पिताजी को कहा है कि अन्यस्य दोष गुण चिंतनम आशु मुक्त्वा। अन्यस्य दोष गुण चिंतनम आशु, आशु मतलब शीघ्रता से मुक्त हो जा। तो एक प्रश्न यहाँ पर होता है, तो दोष तो ठीक है, लेकिन गुण क्यों? क्योंकि किसी का गुण स्मरण करने से उनमें आसक्ति की संभावना रहती है, इसलिए उन व्यक्ति का भगवान के भक्तों का एक ही लक्ष्य होता है, क्या? मुकुंद चरणेशी नाम साधु नाम समचिता नाम मुकुंद। भगवान मुकुंद की लीला कथा में रमण करते हैं। लेकिन नल कुबेर और मणिग्रीव का श्री भागवत सुडामणि नारद जी ने दोष देखा है ना, वही व्यक्ति दोष देख सकता है जो व्यक्ति इस दोष को दूर करने में समर्थ है। नारद जी ने क्या देखा कि श्री के मद से अंध हो गए हैं। तो चिकित्सा के अनुसार निदान होता है ना, सुचिकित्सक का काम क्या होता है, उसके अनुसार उसकी चिकित्सा करें। जैसे कोई खेडूत होता है, वो हल को खींच कर सूख नहीं बैठ जाता है, जब तक फल प्राप्त नहीं होगा तब तक वो अपनी क्रिया शुरू रखेगा। वैसे ही भगवान के भक्त है, लास्ट तक अपनी क्रिया शुरू रखते हैं। तो नारद जी ने देखा कि श्री के मद में अंध है, सबसे बड़ा प्रथम उपाय क्या है उसकी चिकित्सा का, श्री से अलग कर दो, ऐश्वर्य से अलग कर दो। कोई व्यक्ति बहुत बड़ा धनी हो और भगवान की कृपा से अगर मान लीजिए कि धन चला जाए और वो गरीब हो जाए तो इस गरीबाई के कारण जो दुख प्राप्त होता है उसके बाद वो सुधरने का चांस जल्दी रहता है ना। जितना धनी व्यक्ति ग्रहण नहीं, धनी व्यक्ति में एक बात रह जाती है कि मैं हूँ, मुझसे हो रहा है, चाहे कोई भी हो है ना, मेरे द्वारा मैंने इतना दिया है ना, मैंने दिया तब हुआ, एक अहंकार मैंने किया मेरे द्वारा हो रहा है, ऐसा एक बना रहता है ना। तो इस अहंकार के कारण, वो अहंकार जब नष्ट हो जाता है दुख के कारण, तब व्यक्ति ग्रहण करने में समर्थ होता है। तो नारद जी ने उसको अलग कर दिया, किससे अलग कर दिया, धन से अलग करने का मन में विचार किया। तो भाई अलग तो कर दिया, तो अलग करके फिर तो कुछ तो नारद जी ने सोचा कि इसका हृदय का भी शोधन करना पड़ेगा। तो उसको नारद जी ने दंड रूपी, जैसे हल प्रदान करता है, खेडूत हल चलाता है, हल जोतता है, तो हल के रूप में दंड प्रदान किया। और इसके अगले श्लोक में नारद जी ने दो बार कहा है कि मद अनुग्रहात मद प्रसादेन है ना, तो भगवान की भक्ति प्रदान की, इससे हृदय का शोधन किया। और हृदय के शोधन के बाद फल क्या प्राप्त हुआ, खेडूत को फल क्या प्राप्त होता है, फल प्राप्त होता है इसके बाद ही सूप बैठता है ना, तब तक उन्हें तो भगवान की हृदय का शोधन कर भगवान की भक्ति में लगाकर कृष्ण प्रेम रूपी उसको फल प्रदान किया नारद जी ने, है ना। इसलिए अगले श्लोक में कहा कि मद अनुग्रह न, मेरे अनुग्रह से मद प्रसाद है न स्मृति लब्धवा, स्मृति बनी रहेगी। उन्होंने आजी जी कहा नहीं, कुछ किया नहीं था, वो दोनों ही खड़े थे, ऐसे ही खड़े थे। उन्होंने कोई प्रार्थना नहीं कि नारद जी ने कि कुछ अपराध हुआ अब माफ कर दीजिए, अब थोड़ा शॉर्ट रास्ता निकाले कुछ तो कीजिए, नहीं कुछ नहीं किया, ऐसे ही कह दिया। तो ऐसे ही खड़े थे, अपराध तो किया था कि साधु संतों का अपमान किया था, कुछ बोले नहीं थे, लेकिन वो परिपाटी भूल गए थे बड़ों का सम्मान करना, तो वैसे ही खड़े थे। तो नारद जी ने कहा कि वृक्ष हो जाओ। श्रीपद जीव गोस्वामी ने कहा है, लिखा है उस श्लोक में कि वृक्ष वो भी घटादार वृक्ष, घटादार वृक्ष हो गए और 37,000 साल तक व्रजवासियों की सेवा बनी रही, है ना। तो आखिरकार नारद जी ने सेवा में ही लगा दिया ना, तो इसने श्राप कहाँ दिया। बहुत बहुत आचार्यों ने लिखा है कि श्राप श्राप, तो श्राप कैसे दिया, अगर उन्होंने नहीं कहा होता नारद जी ने इस श्लोक में एवं उक्त्वा कहा, ऐसा सुखदेव गोस्वामी ने नहीं कहा कि श्राप देकर नारद जी गए, नहीं एवं उक्त्वा मतलब इस प्रकार कहकर, इस प्रकार कहकर कहा, श्राप देकर नहीं कहा, है ना। तो पहले तो व्रजवासियों की सेवा बनी रहेगी, घटाधार वृक्ष होंगे तो व्रजवासी की सेवा बनी रहेगी, तो इसलिए घटाधार वृक्ष। और तपस्या तप का भी प्रतीक है वृक्ष, तो इसमें बहुत सारे भाव हैं, वो आप लोगों ने कल सुना, हम लोगों ने सुना आदि योग प्रभु से, लेकिन आज का मुख्य श्लोक यह है कि एवं उक्त्वा इस प्रकार कहकर कि जाओ तुम दोनों वृक्ष हो जाओ, इस प्रकार कहकर अर्थात नारद जी ने नरक से बचा लिया उनको, वो नरक में जाने वाले थे, जिस क्रिया कर रहे थे उस क्रिया का फल नरक है, और नरक से उसको उबा कर नारद जी ने गोकुल में वह भी भगवत स्मृति में तो आशीर्वाद दिया कि श्राप दिया। भगवान के भक्तगण यही प्रार्थना करते रहते कि जहां भी भेजो कीट गट, जहां भी भेजो, लेकिन हे प्रभु आपकी स्मृति बनी रहे, है ना, एक ही प्रार्थना। और भगवान के भक्तों के लिए 6 स्कंद में 17वें अध्याय में कहा गया कि तुल्यार्थ अपि दर्शिन, नरकेशु उसके लिए क्या स्वर्ग क्या नरक, तुल्यार्थ अपि दर्शिन, सब तुल्य सब समान है। तो एवं उक्त्वा इस प्रकार कहकर सदेवर्षि वह भगवान देवर्षि देवताओं के ऋषि गतो नारायण आश्रमम, नारायण आश्रमम गत, नारायण नारायणस्य आश्रमम, नारायण के आश्रम में गए। श्रीपाद जीव गोस्वामी ने कहा है कि नारायण आश्रम मतलब एक अर्थ कहा है कि वैकुंठ में गए, क्योंकि वैकुंठ भगवान जहां रहता है वही उसका आश्रम है, वही उसकी। यद्वा यथवा यद्वा बद्री का आश्रम में गए, वहां भी नारायण वास करते। वहां नारायण क्यों वास करते उनकी 2-3 कथा है। सबसे बड़ी सबसे पहली कथा तो यह है कि भगवान ने सोचा कि कलयुग के जीवों में तपस्या कोई तपस्या नहीं कर पाएगा, 45 मिनट भागवत क्लास में बैठना है तो एक आसन पे कोई नहीं बैठ पाएगा, तो तपस्या तो बहुत दूर की बात है ना। ये कलयुग का प्रभाव है। तो भगवान ने सोचा कि इस समस्त जीवों के बदले में हम ही तपस्या कर ले, जो व्यक्ति यहां आकर हमारा दर्शन करेगा उसको सभी तपस्याओं का फल प्राप्त हो जाएगा। इसी कारण से नर नारायण जी बद्री का आश्रम में तपस्या कर रहे हैं और वहां पर नारद जी उसकी आराधना करने के लिए जाते हैं, एक बात। दूसरी बात, जैमिनी भारत में लिखा है कि एक सहस्त्र कवच दैत्य था। मैं आपको शॉर्ट शॉर्ट में सिर्फ स्मरण करा, मुझे मालूम है कि आप सब जानते हैं, लेकिन प्रसंग अनुसार मैं स्मरण करा रहा हूँ मात्र कि क्यों नारायण आश्रम क्यों लिखा है, कि वहां क्यों गए। आने के टाइम तो नहीं लिखा कहां से आए, जाने के टाइम क्यों लिखा कि नारायण आश्रमम गत। वह ऐसा भी कह सकते हैं एवं उपवास देवर्षि गत, भगवान की कीर्तन करते करते चले गए, ऐसा भी कह सकते थे। तो दैत्य सहस्र कवची दैत्य था, भगवान सूर्य को प्राप्त प्रसन्न करके उन्होंने वर मांग लिया था कि कोई भी व्यक्ति मेरे साथ 1000 साल युद्ध करेगा तब मेरा एक कवच टूटेगा। वैसे 100 कवच थे उसके पास, और वो मर जाएगा, उसके बाद वह मर जाएगा, उसके बाद दूसरा युद्ध करेगा। तो वो बहुत दैत्य के पास जब शक्ति आ जाती है तो क्या होता है मालूम है ना, आजकल आ गई है तो इसका प्रभाव भी हम लोग जानते हैं, तो उस टाइम भी वैसे ही प्रभाव। तो भगवान ने सोचा कि अब उसका कुछ हल निकालना होगा, सभी सवालों का सभी कारणों का कारण तो एक ही है। तो भगवान नर नारायण के रूप में आए, 1000 साल तक नारायण युद्ध करते थे, जिसके बाद वो बेहोश हो जाते हैं, नर उसको मंत्रों से जीवित करते थे। बाद में 1000 साल जब 99 कवच टूट गए तब वह जो दैत्य था वो सूर्य में समा गया, और वही कर्ण के रूप में आया। जन्म से ही कवच धारण लेके, एक कवच था ना कर्ण के पास, तो वही कर्ण के रूप में आए, सूर्य पुत्र कर्ण को कहा गया है ना, तो वही कवच लेकर आए और उनको अर्जुन और कृष्ण ने मारा। और एक भी कथा, बहुत सारी कथा है, लेकिन कहने का बात यह है कि नारायण आश्रम, वहां नारायण का वास है। भागवत में भी प्रथम स्कंद में आया है ना, नरव नारायणम नमस्कृत्यम। तो बद्रिका आश्रम का अधिष्ठात्र देव है नर नारायण, इसलिए व्यास जी ने उनका स्मरण किया है। तो सभी ओर से नारायण जी वहां पर रहते हैं, तपस्या करते हैं, तो इसीलिए गए। तो नारद जी ने सोचा कि मैंने वरदान तो दे दिया है, तो भगवान का भक्त जो होता है वो कोई दुखी व्यक्ति को देखकर भगवान को प्रार्थना करता है, भगवान के सामने आकर भगवान को प्रार्थना करता है, भगवान को कहता है हे प्रभु आप उस पर कृपा कर दीजिए। तो वह प्रार्थना करने के लिए, वह कहने के लिए कि मैंने तो कह दिया है, अब हे प्रभु आप उस पर कृपा कीजिए, आपका काम है कृपा करना। तो वह कहने के लिए नारायण आश्रमम गत, नारायण आश्रम में। यही भक्तों का स्वभाव होता है, भक्त किसी व्यक्ति को दुखी देखता है तो सामर्थ्य न होने पर भगवान को प्रार्थना करता है। पंढरपुर में भक्त हो गए राका वाका, अभी मुझे एक कथा स्मरण आ गई। बहुत बहुत गरीब थे, मतलब रोज जंगल राका बाका जंगल में जाकर सुबह में लकड़ी लाते थे, वही लकड़ी बेचकर वही खाना पीना बस, बाकी और कुछ नहीं। दूसरे दिन के बचाने के लिए एक पाए भी नहीं थी। तो नामदेव जी ने भगवान से प्रार्थना किया कि प्रभु वो बेचारा गरीब है, आपका भजन कर रहा है, अनन्य भाव है, कुछ दे दीजिए ना, क्यों परेशान करते हो इतना। भगवान के मैं बहुत बार देने के लिए कोशिश किया, ये सब समर्थ संत बात करते थे भगवान के साथ, मैंने बहुत बार कोशिश किया देने के लिए लेकिन वो लेता ही नहीं है, मैं क्या करूं। तो नामदेव की ऐसा थोड़ी होता है कि आप देंगे और नहीं लेंगे। तो ये कहा कि तुम साथ चलो, भगवान ने कहा कि एक बार तुम सोने के सिक्के की बड़ी गोनी वहां से राका और बाका जो चलता है वहां रख दी, ये सत्य घटना है, कोई फालतू दृष्टांत नहीं है। तो वहां पर रख दी, तो वहां से पहले राका बाका उसकी पत्नी का नाम था, उसको घर में कुछ काम होता वो पीछे से चलती थी, वो पहले चल गए चल दिए। तो उन्होंने सोना का वो बड़ा कौनी देखा, मन में विचार किया कि किसका होगा, पता नहीं जिसका भी हो, लेकिन मेरी पत्नी अभी आएगी और वो देख लेगी सोना है तो उनके मन में लालच आने की संभावना है, इसलिए इसको यहाँ जमीन में उसको दबा देना चाहिए, डांट देना चाहिए। तो वो खड्डा खोद रहा था तब बाकी आ गई, तो उन्होंने कहा क्या कर रहे हो राका जी, तो उन्होंने कहा कि मैं सोचा कि ओ तुम अभी तक सोना और मट्टी में अंतर समझ रहे हो, उसका कहने का तात्पर्य मैं तो इन दोनों में अंतर ही नहीं समझ रहा हूँ, क्या सोना क्या मिट्टी। तब तो उनको बुद्धि आई कि मेरी पत्नी तो मुझसे भी ज्यादा कहीं गुनी, तो मेरी दृष्टि में कि सोना और मिट्टी एक ही समान है, मैंने कभी अपने जीवन में धारण ही नहीं किया सोना, तो सोने का प्रभाव क्या है सोना क्या है, एक ही जो भी है एक ही वस्त्र है उनको और धारण करके आती है, लेकिन पूर्ण रूप से उनका चित्त भगवान में लगा हुआ था। तो नामदेव जी को भगवान ने नामदेव जी के सामने देखा कि भगवान ने कहा कि नामदेव जी ने कहा कि कुछ दूसरा उपाय ढूंढते हैं प्रभु, तो ठीक है वो जंगल में गए, वो दोनों आगे जाकर क्या किया, तो जितने भी लकड़ी थी ना तो उनको बांध दिया, इकट्ठा करके बांध दिया, भगवान योग शक्ति से क्या नहीं कर सकते, तो अभी ले लेगा आकर तो उसको मेहनत नहीं होगी, सरलता से प्राप्त हो जाएगी। तो वहां जाकर वो देखते हैं राका बाका, तो कहते हैं कि ओ हमारे पहले ही आज कोई आ गया है, और उन्होंने सब लकड़ी बांध कर रखी है, अब हमको स्पर्श करना नहीं चाहिए, ये किसी की लकड़ी हो गई है। तो मन में सोच रहे थे तो उन्होंने वह निर्णय पर आ गया कि आज भगवान की इच्छा है कि हम उपवास पर ही दिन बिताए। तो वहां से जंगल में से जब जा रहे थे तो भगवान और नामदेव जी वहां पर प्रकट हो गए, राका बाका समझ गए कि नामदेव जी का ही काम है, तो उन्होंने कह दिया कि ये सब तेरा ही काम होगा ना, ऐसे क्यों करता है कि प्रभु को आना पड़े। वो प्रभु के साथ घर पर गए, प्रभु ने बहुत कहा कि कुछ ले लो कुछ, मैं देने के लिए आया हूं, जैसे ध्रुव महाराज को कहा कि कुछ ले लो वरना लोग क्या कहेंगे कि तपस्या करवाया लेकिन कुछ दिया नहीं, है ना। तो भगवान आज ही जी कर रहे हैं भक्त के सामने कि कुछ ले लो, लेकिन वो लेने के लिए तैयार नहीं है, हम छोड़ने के लिए तैयार नहीं है भाई, है ना, अपना नहीं दूसरे का भी हम छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, ये हमारा स्वभाव है। तो भक्त की परिपाटी में तो कहां हम लोग कब स्थान प्राप्त होगा, खैर वो तो दूसरी बात है, लेकिन वो लेने के लिए तैयार नहीं हुए। तब नामदेव जी ने कहा एक बहुत सुंदर, भगवान दे रहे हैं भगवान की प्रसादी के रूप में एक पीताम्बर ले लो सिर्फ। तो नामदेव जी के भगवान की बात नहीं मानी राका बाका जी ने, लेकिन भक्त की बात पर मान गए। ये ठीक है, भगवान की बात बहुत सारे भक्त नहीं माने हैं, यही महाराष्ट्र में पुंडरीक भक्त हो गया, समय तो हो जाएगा जो कहना है वो बाकी रह जाएगा, लेकिन दो पांच मिनट इधर उधर आप लोग चला लेंगे। तो वो जप कर रहे थे, पुंडरीक नाम के एक भक्त हो गए, वो जप कर रहे थे, तो भगवान आया कि मैं साक्षात आया हूं, अब जप छोड़ दो और आंखें खोलो मेरा दर्शन करो। तो उन्होंने कहा कि नहीं मैं जप नहीं छोड़ूंगा, अभी तुम रुक जाओ मेरा जप बाकी है। तो भगवान कहे तो मैं चला जाऊं, चला जाइए के जब तक ये जप है तब तक तुमको आना पड़ेगा मेरे पास। तो वही नामदेव जी ने कहने का तात्पर्य है कि वो राका बाका जी ने नामदेव जी की बात भगवान की बात नहीं मानी, भगवान सामने तो पीताम्बर ले लिया। तो मैं यह बात कह रहा था कि भक्तगण कभी कभी भगवान के पास आकर के प्रार्थना दूसरों के लिए करते हैं, हे प्रभु आप उन पर कृपा, तो वो प्रार्थना करने के लिए गए। दूसरा भाव यह है इस श्लोक में गतो नारायण आश्रम, तो नारद जी ने सोचा कि मैंने अपने मुंह से तो कह दिया है कि भगवान आएंगे, लेकिन भगवान से और से कहना एक हिमाकत की बात है ना भाई, कि कहां ठाकुर जी कहां मैं, और मैंने कह दिया कि ठाकुर जी आएंगे तो ठाकुर जी को जाना पड़ेगा। तो क्षमा प्रार्थना करने के लिए नारद जी नारायण आश्रम में गए कि ठीक है प्रभु मैंने तो कह दिया है कि लब्ध
प्राप्त होगी, भगवान की भक्ति भगवान प्राप्त होगी। कह दिया है आप जाएंगे, लेकिन क्षमा अपराध ये सब हो गया है, अब आप थोड़ा संभाल लीजिए। तो वो कहने के लिए नारद जी नारायण आश्रम में गए। अथवा एक भाव यह भी है उस पर कि नारद जी अपने नारायण इष्ट देव की आराधना करने के लिए, तपस्या करने के लिए नारायण के आश्रम में गए। तो स देवर्षि एवं उक्त, वह देवर्षि इस प्रकार कहकर नारायण आश्रम गत, नारायण के आश्रम में गए। अब सुखदेव गोस्वामी मूल बात, मूल प्रसंग जहां से शुरू हो रहा था गोकुल, उस बात को कह रहे हैं कि नल कुबर मणिग्री हो, इसमें असुर नहीं है, आसुत आसुत यमलार्जुन। तो नल कुवर और मणिग्रीव तुरंत क्या हो गए, यमज अर्जुन यमलार्जुन वृक्ष बन गए। अब मूल कथा को सुखदेव गोस्वामी कल से प्रारंभ करेंगे। हरे कृष्णा। किसी के कोई कमेंट या कोई त्रुटि की पूर्ति करनी हो तो आप कर सकते हैं। तो क्यों नहीं, भगवत गीता में श्लोक है ना, क्षीणम पुण्यम मर्त्य लोकम, जब तक पुण्य है तब तक वहां पर रहेंगे, पुण्य के कारण, पुण्य के कारण वहां पर है ना। तो पुण्य खत्म हो जाएगा तो तुरंत नीचे आ जाएंगे। हाँ, तो जो कर्म किए है, तो कर्म तो सिटी से लेकर ब्रह्मा जी तक जितने भी जीव उन सबको कर्म लागू पड़ता है, तो सबको कर्म का फल तो भुगतना पड़ता है। इसलिए गीता में भगवान ने कहा कि कर्म की बहुत आटी घूटी है, बड़े बड़े विद्वान भी उसको नहीं समझ पाते है ना। तो कर्म किया है तो फल भुगतना ही पड़ेगा। और कुछ सेवा, ग्रंथराज श्रीमद् भागवत की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। वांछा कल्पतरु यस्य कृपा सिंधु भाव।